नमस्कार। आज हम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्माचार्य जी की एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक हमारी वसीयत और विरासत इस पर बात करेंगे, और इसमें भी खास तौर पर एक अध्याय है हमारी प्रत्यक्ष सिद्धियां। तो आज इसी पर थोड़ी गहन चर्चा करते हैं। हमारा मकसद है कि पूज्य गुरुदेव ने जो सिद्धि की बात कही है उसे जरा खोल कर समझें। मतलब वो असाधारण सफलताएं जो साधना से मिलती हैं और जो सिर्फ कोई कौतुक या चमत्कार नहीं बल्कि असल में लोक कल्याण के लिए होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि भाई आध्यात्मिक संपदा भी वो भौतिक संपदा की तरह ही दिखती है, प्रकट होती है। लेकिन यहां वो साफ करते हैं कि सिद्धि का मतलब वो नहीं है जो हम आमतौर पर समझ लेते हैं, जैसे कोई जादू टोना या कोई चमत्कार दिखा देना। ये थोड़ा अलग है ना?
हाँ बिल्कुल। और यहीं पूज्य गुरुदेव एक बहुत साफ लकीर खींचते हैं। एक तरफ है साधना से सिद्धि और दूसरी तरफ है महज बाजीगरी। उनके हिसाब से सिद्धि का असली मतलब है वो खास, वो बड़े पैमाने के काम जो आम लोगों के भले से जुड़े हों। ऐसे काम जिन्हें देखकर लगे कि भाई ये कोई अकेला आदमी या औरत अपने दम पर तो नहीं कर सकता। ये बिल्कुल अलग है उन चीजों से जैसे हवा से मिठाई मंगा ली या नोट दुगने कर दिए। वो तो बस लोगों में कौतूहल जगाकर मतलब वाहवाही लूटने वाली बातें हैं।
अच्छा।
हाँ, यहाँ सबसे जरूरी बात है कि काम का मकसद क्या है और जो कर रहा है यानी साधक उसका अपना चरित्र कैसा है, उसकी प्रामाणिकता कितनी है।
तो फिर सवाल उठता है कि अगर ये जादूगरी नहीं है तो ये असल सिद्धियां होती कैसे हैं, प्रकट कैसे होती हैं? पूज्य गुरुदेव तो कहते हैं कि साधक अक्सर बिना किसी साधन के ही शुरू कर देते हैं, बस आत्मविश्वास और भगवान पर भरोसे के साथ। ये कैसे होता है? हाँ,
और देखिए यही तो फर्क है एक अध्यात्मवादी और एक आम संसारिक व्यक्ति की सोच में। पूज्य गुरुदेव यही बताते हैं, साधक एक बड़े अच्छे मकसद के लिए पहला कदम उठाता है और फिर धीरे धीरे वक्त के साथ जरूरी साधन भी जुटते जाते हैं, लोगों का सहयोग भी मिलने लगता है। पुस्तक में उन्होंने कई मिसालें दी हैं, जैसे समर्थ गुरु रामदास और शिवाजी का काम या भगवान बुद्ध का वो विश्वव्यापी आंदोलन।
हाँ, गांधी जी का सत्याग्रह भी।
बिल्कुल, गांधी जी का सत्याग्रह, विनोबा जी का भूदान यज्ञ, ये सब कितने छोटे रूप में शुरू हुए थे लेकिन देखिए कितने कामयाब हुए। तो ये दिखाता है कि अगर संकल्प पक्का हो, नियत साफ हो तो साधन खींचे चले आते हैं।
और सबसे दिलचस्प बात तो ये है जो मुझे लगती है कि पूज्य गुरुदेव अपने ही जीवन के कामों को उन्हें भी इसी साधना से सिद्धि के उदाहरण की तरह बताते हैं। ये बड़ी हिम्मत की बात है।
हाँ अवश्य, और उनके उदाहरण तो बहुत जबरदस्त है। जैसे एक बहुत बड़ा उदाहरण है 1958 का सहस्रकुंडीय यज्ञ, वो उनके 24 साल के गायत्री महापुरुष चरण की पूर्णाहुति थी, मथुरा में हुआ था। आप सोचिए करीब करीब 4 लाख गायत्री उपासक वहां बुलाए गए थे।
अरे 4 लाख, बाप रे।
जी, और इतनी बड़ी व्यवस्था, लाखों का खर्च, और जैसा वो बताते हैं ये सब बिना किसी से एक पैसा मांगे पूरा हो गया। ये सिर्फ मैनेजमेंट स्किल से तो ज्यादा ही कुछ लगता है।
सच में 4 लाख लोग और बिना मांगे पूरी व्यवस्था, ये तो यकीन करना मुश्किल है। इसके पीछे क्या था फिर? पूज्य गुरुदेव क्या कहते थे? कोई दैवी शक्ति या तप की ऊर्जा?
पूज्य गुरुदेव तो इसे ईश्वर की प्रेरणा और अपने संकल्प की पवित्रता का ही नतीजा मानते थे। उनका मानना था कि जब मकसद एकदम शुद्ध हो, लोक मंगल का हो, तो फिर दैवीय मदद अपने आप अप्रत्यक्ष रूप से साधन जुटा देती है। फिर देखिए अखंड ज्योति पत्रिका का उदाहरण।
हाँ, वो तो आज भी चल रही है।
बिल्कुल, 1937 से लगातार छप रही है, बिना किसी विज्ञापन के, बिना चंदे की अपील के, सिर्फ लागत मूल्य पर, और आज लाखों लोग उसे पढ़ते हैं जबकि हम देखते हैं बड़ी बड़ी पत्रिकाएं बंद हो जाती हैं पैसे की कमी से।
और उनका वो विशाल साहित्य लेखन, हजारों पुस्तकें।
जी हाँ, प्राचीन ग्रंथों के आसान अनुवाद से लेकर जिंदगी के हर पहलू पर प्रैक्टिकल गाइडेंस देने वाली हजारों पुस्तकें, और ये करोड़ों लोगों तक पहुंची हैं, उनकी जिंदगी में बदलाव लाई हैं।
और इसी के साथ गायत्री परिवार का बनना, उसका इतना बड़ा नेटवर्क, लाखों जागरूक लोग एक साथ जुड़े हैं, देश भर में 2400 से ज्यादा प्रज्ञा पीठ हैं जो लोगों के अपने घरों में हैं, और 750 प्रज्ञा संस्थान।
ये सब मिलकर नैतिक, बौद्धिक, सामाजिक बदलाव का एक बहुत बड़ा प्रयास है। और हाँ, ब्रह्म वर्चस्व शोध संस्थान भी, जो अध्यात्म और विज्ञान को जोड़ने पर रिसर्च करता है।
इतने बड़े बड़े कामों के लिए पैसा कहाँ से आता था, ये भी अपने आप में एक रहस्य जैसा ही है।
हाँ, तो पूज्य गुरुदेव इसके लिए अपने बहुत ही अनोखे फंडिंग मॉडल का जिक्र करते हैं। एक था ज्ञान घट, जिसमें लोग रोज 10 पैसे निकालते थे ज्ञान यज्ञ यानी अच्छे विचारों को फैलाने के लिए।
अच्छा, 10 पैसे रोज?
जी। और दूसरा धर्मघट, जिसमें रोज एक मुट्ठी अनाज अलग रखा जाता था पुण्य के कामों के लिए। और सबसे बड़ी बात, हजारों ऐसे निस्वार्थ कार्यकर्ता, पढ़े लिखे योग्य लोग जो बस गुजारे लायक भोजन वस्त्र पर अपना पूरा समय अपनी पूरी जिंदगी दे रहे हैं। तो ये जो इतना बड़ा सहयोग मिला, इतने समर्पित कार्यकर्ता मिले, ये भी पूज्य गुरुदेव के अनुसार एक सिद्धि ही है। ये दिखाता है कि लोगों को मिशन के मकसद और उसकी पवित्रता पर कितना गहरा विश्वास था, जिसकी वजह से साधन और लोग चुंबक की तरह खिंचे चले आए।
ये तो हुए बाहरी काम जो दुनिया को दिखते हैं। पुस्तक में पूज्य गुरुदेव एक अंदरूनी सिद्धि की भी बात करते हैं, खासकर अपने हिमालय प्रवास के बारे में। वो क्या है? क्या वो किसी चमत्कार से जुड़ा है?
नहीं, और यही बात वो बहुत जोर देकर कहते हैं कि उनका हिमालय जाना किसी जादू वाले अनुभव के लिए नहीं था, या कोई चमत्कार देखने, या किसी छुपे हुए सिद्ध बाबाओं से मिलने के लिए नहीं था जैसा लोग सोच लेते हैं, बल्कि वो तो ज्यादा अपने अंदर उतरने के लिए था, अपनी आत्मा को परमात्मा के और करीब ले जाने के लिए, और अपनी जो भावनाएं हैं, जो संवेदनाएं हैं, उन्हें और ऊंचा उठाने और शुद्ध करने का एक गहरा साधना का समय था वो।
अच्छा, मतलब भावनाओं का परिष्कार?
बिल्कुल। वो बताते हैं कि अपनी भावनाओं को सुधार कर, उन्हें दिव्य बनाकर, हम रोजमर्रा की साधारण जिंदगी में भी, साधारण परिस्थितियों में भी, वो स्वर्गीय आनंद, जिसे सच्चित आनंद कहते हैं, उसका अनुभव कर सकते हैं। इस बारे में उन्होंने अपनी एक और पुस्तक सुनसान के सहचर में काफी विस्तार से लिखा है। तो ये जो अंदर की स्थिरता है, अंदर का जो आनंद है, इस स्थिति को पा लेना भी वो एक बहुत ऊंचे दर्जे की सिद्धि मानते हैं।
ये अंदर की शांति वाली बात, आजकल की जो भागदौड़ वाली जिंदगी है उसमें तो ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ी सिद्धि लगती है।
हाँ बिल्कुल, और शायद यही वो सिद्धि है जिसके लिए हर इंसान कोशिश कर सकता है, चाहे वो बाहर की दुनिया में कितना भी बड़ा या छोटा काम क्यों ना कर रहा हो।
तो आज की इस पूरी बात का निचोड़ यही लगता है कि पूज्य गुरुदेव के हिसाब से सिद्धि का मतलब कोई चमत्कार दिखाना या बाजीगरी नहीं है, बल्कि ये तो साधना से मिली हुई अपनी अंदरूनी शक्ति को, अपनी ऊर्जा को लोक मंगल के बड़े असाधारण कामों में लगाना है, और साथ ही अपने अंदर गहरी शांति, स्थिरता और आनंद की स्थिति को पाना है। ये बाहर और अंदर दोनों लेवल पे एक बड़ी उपलब्धि है।
एकदम सही कहा आपने। और अंत में एक सवाल जो पूज्य गुरुदेव हमारे सोचने के लिए छोड़ जाते हैं, वो इशारा करते हैं कि ये जो क्षमता है, मतलब संकल्प, अच्छे गुण और ईश्वर पर भरोसे के दम पर असाधारण काम करने और अंदरूनी खुशी पाने की क्षमता, ये सिर्फ कुछ खास लोगों तक की सीमित नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि अगर कोई भी आम आदमी या औरत अपने अंदर इन गुणों को जगाए, तो वो चाहे कितने भी छोटे लेवल पर क्यों ना हो, अपनी जिंदगी में और अपने आसपास की दुनिया में कौन से ऐसे अनसोचे सकारात्मक बदलाव या योगदान ला सकता है, इस पर सोचना वाकई दिलचस्प होगा।